ओम शांति। सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति, सतयुग त्रेता युग में हम सभी जीवन मुक्त थे, बंधन मुक्त थे, लेकिन जैसे हमने द्वापार में प्रवेश किया, माया ने हमें जेल में ठोक दिया और धीरे धीरे विभिन्न बंधनों से हमें बांधने लगी और बंधनों के कारण हम दुखी और अशांत होते गए। तो बंधन मुक्त बनाने के लिए निराकार राम हम सभी आत्माओं रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने आए, हमें बंधनों से छुड़ाने आए। हर रोज हमें ज्ञान और योग की पालना देते हैं, उस पालना में बाबा हमें विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं ताकि हम बंधन मुक्त होते रहें। बंधन माना जो हमारे मन और बुद्धि को बांधते हैं, बंधन माना जो मन बुद्धि पर बोझ अनुभव कराते हैं, बंधन अर्थात पाप कर्मों का बोझ हमारे सिर पर जो है वो हमें दुख की अनुभूति कराता है। बंधन हमें दुखी बनाते हैं। तो वर्तमान समय हम सभी का लक्ष्य है इन बंधनों से आजाद बन जाना, उड़ता पंछी बनना, स्वतंत्र पंछी बनना, क्योंकि बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम कौन से बंधन हमें बांधने की कोशिश करते हैं और उन बंधनों से कैसे मुक्ति प्राप्त करें, उस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। पहला बंधन है अपने देह का बंधन। सतयुग त्रेता युग में देह बंधन अनुभव नहीं होता था, लेकिन ये पतित पांच तत्वों से और पांच विकारों की देन है। पतित शरीर ये आत्मा को अपने तरफ खींचता है, बांधने का प्रयास करता है और हमारा अपने देह से बहुत लगाव होता है। सबसे जास्ती प्यार हमारा किससे होता है? हाँ जी, अपने देह से। क्यों होता है? क्योंकि 24 घंटे हमारे साथ रहता है। दुनिया में कोई भी संबंधी आपके साथ 24 घंटे नहीं रहता है, दो पांच घंटा, पांच दस घंटा रहेगा। तो 24 घंटे हमारे साथ में रहने से देह के साथ हमारा बहुत जबरदस्त लगाव हो चुका है। देह को सजने संवारने के लिए, श्रृंगारने के लिए कितना समय हम लगाते हैं। बाबा तो मुरली में स्पष्ट कहते हैं, देह को भूलो और मुझे याद करो, देह को भूलो और मुझे याद करो, अर्थात देह के बंधन से न्यारे होने के बिना हम बाबा को अच्छी तरह से सरल रीति से याद नहीं कर सकते हैं। तो देह के बंधन को जीतने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए पहली युक्ति है, देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना, विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करते रहेंगे तो आत्मा का भान बढ़ता जाएगा और देह का भान घटता जाएगा, टूटता जाएगा, मिटता जाएगा। 100% आत्मा का भान रहना अर्थात देह के बंधन से मुक्ति पाना। इसलिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हमें करते रहना है। स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है और आत्मा के जो 7 गुण निजी गुण हैं, उन गुणों का एक के बाद एक ऐसा सुंदर अभ्यास करना है। तो जैसे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा, आत्मा का आभा मंडल बढ़ता जाएगा, तो देह का भान मिटता जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति को हमने बहुत पक्का करना है। बाबा के पास आने के बाद इस बात को हमने रियलाइज करना है कि ये आत्मा का पाठ पहला पाठ है, अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए कहते हैं, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद हमें आने लगती है और हमारे सिर पर पाप जो है वो कटने लगते हैं। देह के भान को मिटाने के लिए आत्मा का अभ्यास करते रहें, लेकिन देह का अभिमान को भी हमें मिटाना होगा। मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, मेरे पास बहुत कलाएं हैं, मैं बहुत अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला हूं, इन बातों का जो हमें अभिमान होता है, उस अभिमान को भी हमने जीतना है। देह का भान, देह का अभिमान और देह का अहंकार, ये 3 स्टेप्स हैं। तो देह के अभिमान को जीतने की युक्ति है सदा सोमान में स्थित रहना। जैसे सोमान में स्थित रहते हैं, ईश्वरीय नशा बढ़ता जाता है, देह अभिमान का नशा धीरे धीरे मिटने लगता है। तो सारे दिन भर में सोमानधारी होकर रहने का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। तो आत्मा का नशा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो देह का भान का जो नशा है वो मिटता जाता है, घटता जाता है। इसलिए गुप्त ही गुप्त हमें समान में स्थित रहने का अभ्यास करना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, जो अभी सभा में बैठे हैं, एक भी आत्मा साधारण नहीं है, बहुत रॉयल आत्माएं हैं, होनहार वर्तमान समय हीरो पाठधारी हैं और भविष्य में भी बहुत बड़े पद हमें मिलने वाले हैं। तो पहले से ही बाबा हमें समान में स्थित कराने का अभ्यास कराते हैं, ताकि हम जब सिंहासन पर बैठेंगे, हमारे चेहरे पर वो रुहाब, वो फकूर ऑटोमेटिक अनुभव हो। इसलिए अभ्यास हमें समान के सिंहासन पर बैठे रहने का करना है। चाहे कितना भी अपोजिशन होता है माया का, हमने अपनी पोजिशन को, समान को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान से मिला हुआ ये सिंहासन है, किसी मनुष्य से नहीं मिला है। दूसरा बंधन है देहधारियों के तरफ आकर्षण होने का बंधन, क्योंकि हमारे 84 जन्मों के अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मिक अकाउंट हैं, वो सभी हमें संगम युग में मिलते हैं। तो वो जो भी कर्मों का अकाउंट है, हिसाब किताब आत्माओं के साथ हैं, उसके कारण किसी ना किसी के तरफ आकर्षित होना, लगाव झुका में होना, नाम रूप में फंस जाना, ये बीमारियां हमें अनुभव होती हैं। संगम युग में किसी भी देहधारी के तरफ आकर्षित होना, बार बार बुद्धि उनके तरफ जाना, इसको फैमिलियरिटी कहते हैं। फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। फैमिलियरिटी का कीड़ा माया के अनेक रोग आत्माओं को लगाता है। इसलिए हमें देह के संबंधों से भी मुक्त रहना है। इसलिए अगर किसी संबंध के तरफ हमारा मन जाता है, बुद्धि भागती है, उसको हमें चेक करना है। बच्चे के तरफ बुद्धि जाती है, पति के तरफ बुद्धि जाती है, पत्नी के तरफ बुद्धि जाती है, माँ के तरफ जाती है, पिता के तरफ जाती है, जो भी संबंध हमें खींचता है उसको हमें चेक करना है। और वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है, यहां से बुद्धि को डिटैच करना है और बाबा के साथ बुद्धि को अटैच करना है। सर्व संबंधों की अनुभूति हमें बाबा के साथ करना है, चाहे लगाव हो, अटैचमेंट हो या ना हो, फिर भी सर्व संबंधों की अनुभूति हमें बाबा के साथ करते रहना है। क्योंकि अगर कोई संबंध हमारा अनुभव करने का मिस होगा तो माया वो कमजोरी परख लेगी और वही माया हम पर वार करेगी और अंतिम पेपर में हमें फेल कराएगी। इसलिए सर्व संबंध बाबा के साथ हमें करने हैं, क्योंकि बाबा सर्व संबंधों का स्क्रीन है, बाबा सर्व रसों के भंडार हैं, बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। सर्व बंधनों से मुक्त करने की ताकत बाबा में है, इसलिए हमें सारे बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। दूसरी बात, दूसरी युक्ति है, देहधारियों के साथ में जो लगाव झुकाव होता है उससे मुक्त होने के लिए, जब भी हम कारोबार में आते हैं देहधारियों के साथ, तो न्यारा और प्यारा रहने का बैलेंस हमें मेंटेन करना है। बहुत न्यारा भी नहीं, बहुत प्यारा भी नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा, बाबा के लौकिक संबंधी भी यज्ञ में थे, तो बाबा सबके साथ रहते हुए सबके साथ न्यारे भी रहे और प्यारे भी रहे। इसलिए हमें आंतरिक अभ्यास इस प्रकार का करना है, कोई भी देहधारी हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं करें, ये माया की ग्रहचारी हैं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरे दिल में केवल एक बाबा की याद रहे, किसी भी देहधारी की याद ना आए, ये बहुत बड़ी मंजिल है, लेकिन हमने उस मंजिल को पाना ही है। इसलिए देहधारियों के साथ बुद्धि हमारी बिल्कुल आकर्षित ना हो, क्योंकि आकर्षित होने का और आकर्षित करने का, ये 63 जन्मों का हमारा बहुत कड़ा संस्कार है। इस संस्कार को भी हमने परिवर्तन करना है। आकर्षित होना है तो एक बाबा के तरफ आकर्षित होना है, क्योंकि रचना वो है और देहधारी सारी उसकी रचना है। तो रचना के तरफ हमें बुद्धि को नहीं भगाना है, रचयिता के तरफ हमें बुद्धि को लगाना है। ठीक है। तीसरा बंधन है पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने पदार्थ और पुरानी वस्तुएं, इनके तरफ भी हमारी बुद्धि आकर्षित होती रहती हैं। अब इस पुरानी दुनिया में रखा क्या है? 5000 वर्षों तक हमने इस दुनिया को यूज किया है, अब इसमें कुछ भी नहीं रखा है। नीरस ये दुनिया है, कोई रस इसमें नहीं है। असार संसार है, कोई सार इसमें नहीं है। इसलिए ऐसे पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाएं? कल भी बाबा ने मुरली में कहा, ये पुरानी दुनिया कब्रस्थान है, हमें परिस्थान में जाना है। ये कब्रस्थान से हमें क्या दिल लगाना है? तो पुरानी दुनिया से भी हमें उपराम रहना है, ऊपर उठना है। तो ऊपर वाले को याद करना होगा, और ऊपर वाले को याद करने के लिए उपराम होना होगा। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा हमें बताते हैं। मन में बेहद का वैराग्य हमें अनुभव होता रहे। वैराग्य के दो अर्थ हैं, वैर और राग। न किसी से वैर, न किसी से राग, अर्थात प्यार। सबके साथ समान प्यार हो, सबके साथ समान स्नेह हो, किसी के साथ ईर्ष्या या प्यार जास्ती ना हो। तो इसलिए हमें वैराग्य का अच्छी तरह से अनुभव करना है। वैराग्य का दूसरा अर्थ है माया के साथ जो हमारा वैर है, उसकी आग, उसकी अग्नि बढ़ती रहे तो माया की दुनिया से ऑटोमेटिक हम न्यारे होते जाएंगे। ये दुनिया की कोई भी चीज हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी। और इस पुरानी दुनिया की कितनी भी बढ़िया चीज हो, कितना भी बढ़िया पदार्थ हो, उसके तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है। बाबा ने कहा है ये अल्पकाल की वस्तुएं हैं, ये विनाशी वस्तुएं हैं, ये 5 पतित तत्व से बनी हुई चीजें हैं, इनसे क्या दिल लगाना है? सोना भी अगर है तो ये 5 पतित तत्व से बना हुआ सोना है। सतयुग का सोना होगा वो इससे कई गुना सुंदर होगा, सतप्रधान तत्व से बना हुआ होगा। तो कहने का भाव है किसी भी वस्तु के तरफ हमारी बुद्धि आकर्षित ना हो। आकर्षित होती है तो समझ लो वो सूक्ष्म बंधन मोज आत्मा को बांध रहा है। कोई भी रस रूपी रस्सी, कोई भी रस रूपी रस्सी मौज आत्मा को ना बांधे। हम देखते हैं सारे दिन भर में विभिन्न प्रकार के रस अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जीभ का रस, नैनों का रस, कान का रस, मन का रस, स्पर्श रस, ये विभिन्न प्रकार के रस हमें अपने तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास करते हैं। अभी हमें सर्व रसों के भंडार बाबा हैं। देखो इससे क्या होता है, कोई भी रस है, देखने का रस है, खाने का रस है, जीभ का रस है, उससे क्या मिलता है? हमें थोड़े समय का सुख मिलता है, बस इतना ही मिलता है। अरे हमें तो सुख का सागर मिला है, ये तो थोड़ा सा सुख इस विनाशी चीजों से प्राप्त होता है, हमें बाबा सुख का सागर मिला हुआ है, तो उस सुख के सागर के तरफ हमें आकर्षित होना है। तो उसके लिए दूसरी युक्ति है बेहद के वैराग्य के साथ, दूसरी युक्ति है हमारे कानों में सदा एक गीत अनहद नाद के रूप में बसता रहे। कौन सा गीत है वो? वो मेरा बाबा मुझे घर जाना है, अब घर जाना है, ये गीत हमारे कानों में सदा बसता रहे। कैंसर पेशेंट होता है, उसको जब पता चलता है मैं कैंसर पेशेंट हूं, वो मुझे यहां से जाना है, ये दिमाग में बात बैठ जाती है, तो उसको कितने भी प्रलोभन अगर हम करते हैं, देते हैं, कहते हैं क्या करूं मैं इन चीजों का, मुझे तो यहां से जाना है, तो यहीं से जब बुद्धि में बात फिट हो जाती है, मुझे इस पुरानी दुनिया से परमधाम रूपी घर वापस जाना है, तो यहां से बुद्धि रूपी लंगर हमारा ऊंटने लगता है, और इस पुरानी दुनिया से हमारी दिल हटने लगती है। तो ये निर्मोही बनने की निशानी है। हम किसकी दुनिया में जा रहे हैं भाई? माता है बोलिए, हम किसकी दुनिया में जा रहे हैं? मोहना, किसकी दुनिया में जा रहे हैं? मोहना। तो ये कृष्ण का नाम मोहन नहीं है अकेले का, ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों का भी ये गुण है, कृष्ण के साथ मोहन के साथ हमें राज करना है, उनके साथ हमें पाड़ बजाना है, तो उनके जैसा निर्मोही हमें बनना होगा। इस पुरानी दुनिया से दिल हमारी हटानी होगी, किसी भी व्यक्ति वैभव से मोह हमें न अनुभव हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। चौथा बंधन है कर्मों का बंधन। द्वापर युग से हमने 63 जन्म बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत विकारों के वश होकर विक्रम किए हैं, इस सारे पाप कर्मों का बोझ हमारे सिर पर है, उसके कारण बोझिल होने के कारण हमें दुख की अशांति की भी अनुभूति होती है, तो विकर्मों के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए दो युक्तियां हैं। पहली युक्ति, वर्तमान समय जितना हो सके हमें कर्म योगी बनकर चलते रहना है। जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं तो वो कर्म निर्बंधन कर्म होते हैं, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं कोई भी, उस समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। पहला प्रभाव, उस कर्म का प्रभाव होने की संभावना होती है, जो हमारे सेवा साथी होते हैं उनके स्थिति का प्रभाव होने की संभावना होती है। तीसरी बात, वहां का जो वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। इन 3 बातों के प्रभाव से हमें निर्लिप्त रहना है, उसके लिए कर्म करते हुए योगाभ्यास हमारा बढ़ता रहे, चलता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। बाबा कहते हैं सवेरे शाम को तो आप योगाभ्यास करते ही हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं। अभी वो समय समाप्त हो चुका है, योग कर्म के साथ साथ चलता रहें, उससे कर्मों में दिव्यता आती है और आत्मा निर्बंधन अनुभव करने लगती है। दूसरी युक्ति, कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए दे दान तो छोटे ग्रहण, ये बात हमेशा बुद्धि में पक्की रखनी है। दे दान, संगम युग में हमें दान देते रहना है, ज्ञान का दान, गुणों का दान, विशेषताओं का दान, शांति का दान, शक्ति का दान, दान हमें देते रहना है। दान देते रहते हैं तो ग्रहण उतरता है, अर्थात हमारे आत्माओं को खुशी होती है, आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं। उसके कारण ये जो पाप कर्मों का बोझ है वो घटने लगता है और बाबा से शक्तियां लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, इस तन के द्वारा हमने बहुत पाप कर्म किए हैं, इसलिए तन के द्वारा ही हमने बहुत पुण्य कर्म करने हैं। इस तन को, इन हड्डियों को बाबा की सेवा में खूब घिसाना है। मैं बड़ा हूं, मैं बहुत पोजीशन वाला हूं, मेरे पास बहुत धन है, तो ये सब अभिमान की बातें हमें एक तरफ रखना है और बाबा का मैं बालक हूं और यज्ञ की सेवा करने का चांस मुझे मिला है, ये बहुत मेरा ऊंचा भाग्य है, ये प्रभु प्रसाद मुझे जरूर प्राप्त करना है। इसलिए जो भी हमें सेवा मिलती है, झाड़ू लगाने की भी सेवा मिलती है, फिर भी हमें सोचना है ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये भगवान का घर है। यहाँ जो भी सेवा मिलती है ये बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है। इसलिए आज ये मेरा तन अच्छा है, न जाने कब आएगा जिंदगी में अंधेरा, कब खटिया पर मैं पड़ूंगा किसी को पता नहीं है। इसलिए इस तन को हमने बहुत सेवा में घिसाना है और पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते जाना है, और जैसे जैसे पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा पाप कर्मों का खाता घटता जाएगा, आत्मा निर्बंधन अनुभव करने लगेगी। पांचवा बंधन है विकारों का बंधन। विकारों का बंधन हमें बांधने का पूरा प्रयास करता है। हमने मोटे रूप से विकारों को जीता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी भी आत्मा में विकारों के अंश वंश दिखाई देते हैं। जब हम सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी रोब आने लगता है, हल्का फुल्का कभी गुस्सा आता है, कभी फीलिंग आ जाती है, तो ये निशानियां हैं आत्मा में अभी भी विकारों के दाग लगे हैं, अंश वंश आत्मा में हैं, उनको मैंने उखाड़ कर फेंकना है, मुझे बेदाग हीरा बनकर घर जाना है। जो दाग मुझ आत्मा पर लगा हुआ है, जो मेरी वैल्यू को घटा रहा है, उस दाग को मैंने हर हालत में मिटाना है। लेकिन कैसे मिटेगा, हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं फिर भी ये विकारों के अंश नहीं जाते हैं, इसलिए बाबा का इशारा है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी ज्वाला स्वरूप या कहे शक्तिशाली स्वरूप योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। जब भी हम बैठक का योग करते हैं ऐसा शक्तिशाली योग मुझे करना ही है, ऐसी दृढ़ता के साथ अमृत वेले या नुमा श्याम के योग में बैठना है। जितनी दृढ़ता होगी उसमें उतनी हमें उसमें सफलता मिलेगी। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे बहुत गहरा राज है। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। राज इसके पीछे ये है, जितनी जिस कार्य के लिए दृढ़ता हमारे मन में होती है, उतना संकल्पों का और शक्ति का खजाना हम उसके पीछे लगा देते हैं, लुटा देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें मान इच्छित सफलता स्वतः ही मिलती है। इसलिए हमें बैठक के योग को ऐसे शक्तिशाली बनाना है। अब मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं कैसे पता चलेगा भाई? 87 में हम मधुबन निवासी मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से मिल रहे थे। मुरली के बाद बाबा से एक प्रश्न पूछा, बाबा कैसे समझे मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं? तो बाबा ने कहा कि शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योग में योग एक तरफ अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पापों का बोझा घटता है, आत्मा हल्की अनुभव होती है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमें खुशी भी होती है। तो ऐसे दो प्रकार की अनुभूतियां हमें शक्तिशाली योगाभ्यास से करनी है। तो समय की पुकार ये है, क्योंकि निर्बंधन जब हम बनते हैं तभी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें होती है। और बाबा ने कहा है, कुछ भी हो अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, फरिश्ता स्थिति का अनुभव को बढ़ाओ, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का चांस देना चाहते हैं। केवल हमें अपने हद के क्षेत्र की सेवा नहीं करना है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, तो सारे विश्व की सेवा करने के लिए फरिश्ता स्थिति मुझे निखारनी होगी, उसके लिए निर्बंधन बनना होगा, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाना होगा। अभी ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाना अगर चाहते हैं तो 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। ये गारंटी है आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन निखरता जाएगा, क्वालिटी वाला बनता जाएगा। पहली बार ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात पूरा हमें आत्मा का भान रहे, देह का भान बिल्कुल न रहे, आत्मा में खो जाएं, खुद में खो जाएं, डूब जाएं। क्योंकि जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो जाते हैं, और तभी हमें ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति होती है। तो बुद्धि रूपी नेत्र से हमें भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना है और उसमें स्थित होना है, और देखने के परसेंटेज को बढ़ाते जाना है और उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे आत्मा के अभ्यास की गहराई बढ़ती जाएगी और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना। अर्थात जब भी हम बाबा के पास बैठते हैं परम धाम में या सूक्ष्म अवतन में, हमें शक्तिशाली बैठक से बैठना होगा। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में जब बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो बाबा जो आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं, उस पावर हाउस से हम अथाह शक्तियां अपने तरफ खींचते हैं, परिणाम स्वरूप ऐसा पावरफुल योगाभ्यास हमें अनुभव होने लगता है। दूसरी बात, बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्मा अनुभूति को बढ़ाते रहें। बहुत गहराई की परमात्मा अनुभूति करना अर्थात परम धाम में बाबा के समीप बैठ जाएं और बाबा के पर्सनालिटी को अच्छी तरह से देखें और अनुभव करें नजदीक से। सत्यम शिवम सुंदरम, क्या गजब के बाबा के पर्सनालिटी हैं, सत्यता के सागर हैं, शिवम अर्थात कल्याण के सागर हैं, सुंदरम अर्थात सुंदरता के सागर हैं। तो ऐसे बाबा की गजब के पर्सनालिटी बहुत समीपता से हमें देखना है और अनुभव भी करना है। और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करने के लिए हमें परम धाम में बाबा का शक्तिशाली स्वरूप अनुभव करना है। बाबा शक्तियों के अथाह सागर हैं, सारे संसार में सर्वोच्च सत्ता है, सारे संसार में सबसे बड़ी हस्ती है, सारे संसार की आत्माओं की बैटरियों को चार्ज करने की क्षमता उनके पास है, इतनी वो बड़ी हस्ती हैं। हमने बाबा कह के उनको ऑर्डिनरी समझा, अरे बाबा तो हैं, लेकिन कौन सी वो हस्ती हैं? सारा संसार उनके मुट्ठी में है, सारे आत्माओं रूपी जो कल्प वृक्ष के पत्ते हैं उसके इशारे के बिना एक कदम भी नहीं हटा सकते हैं, उठा सकते हैं। कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी, आप सोचो तो सही जरा। इतनी पावरफुल हस्ती मुझे मिली है भाई, ताली तो बजाओ जरा अच्छी तरह से। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मुझे मिली है, लोगों को पता नहीं है भगवान क्या चीज है और भगवान किधर है, वो बेचारे ढूंढने में ही लगे हैं और हम तो उसके गोदी में बैठ के माल खा रहे। भाई खिला रहे भाई, क्योंकि नहीं आपको माल खिला रहे कि नहीं? यहाँ ज्ञान सरोवर में जो भी बाबा का बच्चा बाबा के घर में आता है, बाबा उनकी खातरी करते हैं, खाने पीने की खातरी तो करते ही हैं, लेकिन विशेष अलौकिक अनुभव कराने की खातरी भी कराते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को बाबा किसी न किसी प्रकार की गहन अनुभूति जरूर कराते हैं, केवल आवश्यकता है बुद्धि से पूर्णतया सरेंडर होने की। जब बुद्धि से सरेंडर होकर बाबा को याद करते हैं, बाबा हमें सुंदर अनुभूति जरूर कराते हैं। तो परम धाम में बाबा का शक्तिशाली प्रखर स्वरूप देखना है और अनुभव करना है। आप सोचो, अर्जुन को जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो अर्जुन ने वर्णन किया, ये जो सूर्य है साकारी दुनिया का, इससे हजारों गुना वो तेजो में है। अर्जुन ने ऐसा वर्णन किया, हजारों गुना तेजो में तो नहीं है लेकिन हजारों गुना शक्तिशाली जरूर है। इस सूर्य को, ऐसे सूर्य को हजारों सूर्य पैदा कर सकता है, इतनी क्षमता उनके पास है। तो इतना शक्तिशाली बाबा का स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। मन और बुद्धि नशे में और खुशी में झूमती हैं तो परमात्म मिलन का मजा ही कुछ और आता है। परमात्म मिलन में बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें स्वतः ही होते हैं। अमृत वेले बैठते हैं लगता है इतनी बढ़िया नींद छोड़ के अभी योग में बैठना है, ये लाल लाइट में एक घंटा बैठना है, बापरे बापरे। उस समय हमें सोचना है मैं योग करने के लिए नहीं बैठी हूं, बैठा हूं दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती है उस हस्ती के साथ मधुर मिलन बनाने के लिए, मनाने के लिए बैठा हूं। फिर आप देखेंगे एकदम रूहानी मस्ती से फकूर से बाबा को याद करेंगे, एक घंटा कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मन और बुद्धि नशे में और खुशी में झूमती रहे। चौथी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बस बहता ही रहे। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस मीलों की दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें ये प्यार कराता है। इसलिए प्यार के सागर में हमें लीन हो जाना है। जब तक लीन नहीं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। उस प्यार के सागर में हम डूब जाएं, समा जाएं, तो बाबा के साथ जब कंबाइंड हो जाते हैं तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों का सागर भी है बाबा। इसलिए प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही कन्वर्ट होती है, परिवर्तन होती है। इसलिए हमें प्यार के सागर में डूब जाना है। माताएं अमृत वेली क्या करती है, बाबा से बड़ी प्यारी रुरिहान करती हैं, प्यार में ही अपना समय बिताते हैं। बाबा मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ, बाबा आप तो बहुत प्यारे हो, आप मुझे थोड़ी शक्ति दो ना बाबा, ऐसे प्यार की रुरिहान में अपना समय बिताते हैं। लेकिन प्यार तो एक माध्यम है आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का, लेकिन उस माध्यम से हमने क्या लेना है, शक्तियां लेना है। सफल योगाभ्यास की विशेषता है शक्तियों की अनुभूति करना। तो मुझ आत्मा ने बहुत शक्तियां प्राप्त की हैं, मेरी आत्मा और भी बैटरी चार्ज हो जाए, चार्ज हो चुकी है, ऐसा अनुभव करना उसको कहते हैं सफल योगाभ्यास करना। पांचवी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास की जो प्रक्रिया है उसमें संपूर्ण एकाग्रता हमारी होना जरूरी है। 1% भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, संपूर्ण एकाग्रता जब होती है तो ज्ञान सूर्य से हमें अथाह शक्तियां प्राप्त होती हैं, योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होती हैं और उस प्रखर अग्नि में हमारे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव स्वतः ही होता है। छोटा सा उदाहरण, सिंपल उदाहरण, सूर्य की रोशनी में मास में जब हम बैठते हैं कागज का पेपर को जलाने के लिए, कितनी भी सूरज की गर्मी तेज हो डायरेक्ट कागज के पेपर को नहीं जला सकती हैं, उसके लिए मैग्नीफाइंग लेंस उसके ऊपर पकड़ना होता है। मैग्नीफाइंग लेंस से जब किरणें उस पास होती हैं, लेजर किरणें बनती हैं और शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ वो कागज पर एक बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है और पेपर 1 सेकंड में जल जाता है। तो इसमें भी जब हम बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा ज्ञान सूर्य को देखते हैं तो बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा ज्ञान सूर्य की किरणें पास होती हैं और लेजर किरणें बनती हैं और ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं, तो योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होती है और उस अग्नि में हमारे विक्रम भस्म होते हैं, ऐसा अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास हमें करना होगा, ठीक है भाई। बंधन मुक्त, मैं मुझे अभी आजादी चाहिए, अंग्रेजों की गुलामी माया की गुलामी मैंने बहुत सहन कर ली, अभी भगवान के होते हुए मुझे कोई भी बंधन बंधा ना हो, मुझे आजादी चाहिए। आजादी माना आ जा दी, जब चाहे मैं आत्मा इस पिंजड़े में आऊं और पिंजड़े से न्यारा हो जाऊं, बाबा के पास बैठ जाऊं, इसको कहते हैं आजादी अनुभव करना, ठीक है भाई। अभी करना चाहते हैं अनुभव योग का, बढ़िया अनुभव करना चाहते हैं क्या भाई? अन्ना वो बजाना जरा लता का, वो बाबा आपने कैसा जादू किया है। सब खड़े हो जाएंगे, टीचर भले बैठ जाओ, भाई सब खड़े, बहने सब खड़े हो जाओ। अभी 15 मिनट के लिए एकदम पावरफुल योग की अनुभूति हम करने जा रहे हैं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। कॉपी पेन डायरी ये जो बांधा है ना वो भी हटा दो, हम आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ एकदम। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य पिंजरे में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पंछी विराजमान हूँ। मैं आत्मा पंछी, माया का गुलाम था, माया के बंधनों में जकड़ा हुआ था। भगवान ने मुझे बंधनों से मुक्त करके आजाद पंछी बनाया है। ज्ञान और योग के पंख प्रदान करके उड़ता पंछी बनाया है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पंछी इस देह रूपी पिंजड़े से न्यारा होकर ज्ञान और योग के पंखों से फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। इस विश्व के गोले से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं, ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मोज आत्म पंछी ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस, परिस्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे जीवन के सहारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मोज फरिश्ते को स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा बिंदु पंछी ज्ञान और योग के पंखों से निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओ, निराकारी दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल। सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा, परम धाम शांति धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मोज आत्म पंछी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म पंछी दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। इस आकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मोज आत्म पंची पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म पंची ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां असीम शक्तियां अखूट शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म पंची स्वयं को आजाद निर्बंधन अनुभव कर रहा हूं, खुशी में झूम रहा हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्मा पंछी ज्ञान सूर्य शिव पिता से महामिलन मंगल मिलन का आनंद ले रहा हूं। सचमुच निराकार राम ने मोज आत्मा रूपी सीता को सजनी को सर्व बंधनों से मुक्त बना दिया है। मैं आत्मा जीवन मुक्त योग युक्त राज युक्त अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा वहां मेरा भाग्य ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकास मौज आत्म पंछी पर पड़ रही है। मेरे द्वारा विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकास पड़ रही है। अनेक आत्माएं बंधनों से मुक्त अनुभव कर रहे हैं। कितनी सुंदर अनुभूति है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव इस नौमा श्याम के समय। शक्तियों से भरपूर आत्मा पंछी पुनः ज्ञान और योग के पंखों से उड़ता हुआ निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रहा हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य पिंजरे में बैठे हुए भी स्वयं को स्वतंत्र पंछी शक्तिशाली आत्म पंछी अनुभव कर रहा हूं। मज शक्तिशाली आत्म पंछी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है। सचमुच दिल से शुक्रिया निकल रही है उस बंधन मुक्त बनाने वाले निराकार राम के प्रति, बाबा के प्रति मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्म पंची हूँ, आजाद पंची हूँ। जब चाहे इस शरीर रूपी डाल से उड़कर परम धाम रूपी घर में बाबा के पास बैठता हूँ, जब चाहे इस शरीर रूपी डाल पर वापिस आता हूँ। ओम शांति शांति शांति।